नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जेफरी ई गार्टन की थ्री डेज एट कैंप डेविड एक आर्थिक इतिहास और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया का विश्लेषण है। पुस्तक अगस्त 1971 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके वरिष्ठ सलाहकारों की कैंप डेविड में हुई गोपनीय बैठक को केंद्र में रखती है। इसी बैठक में उस नई आर्थिक नीति की रूपरेखा बनी जिसने डॉलर को सोने में बदलने की अमेरिकी प्रतिबद्धता निलंबित कर दी। यह निर्णय ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अंत का निर्णायक क्षण बना, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिर विनिमय दरों और डॉलर की स्वर्ण परिवर्तनीयता पर टिकी थी। गार्टन केवल नीति का परिणाम नहीं बताते, बल्कि संकट की पृष्ठभूमि, घरेलू राजनीतिक दबाव, सलाहकारों के मतभेद और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के बीच चुनाव को भी सामने लाते हैं। पुस्तक का उद्देश्य यह समझाना है कि कुछ दिनों में लिए गए निर्णय किस तरह वैश्विक मुद्रा व्यवस्था, व्यापार संबंधों और अमेरिकी आर्थिक नेतृत्व की दिशा बदल सकते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, ब्रेटन वुड्स की संरचनात्मक कमजोरी और डॉलर पर बढ़ता दबाव। पुस्तक की बुनियादी आर्थिक पृष्ठभूमि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था है। 1944 के बाद इस प्रणाली में अमेरिकी डॉलर केंद्रीय मुद्रा था और अमेरिका अन्य देशों की मौद्रिक प्राधिकरणों के डॉलर को तय कीमत पर सोने में बदलने का वचन देता था। दूसरी मुद्राएं डॉलर के मुकाबले अपेक्षाकृत स्थिर दरों से जुड़ी थीं। इस ढांचे ने युद्धोत्तर व्यापार और पुनर्निर्माण को सहारा दिया, लेकिन इसकी स्थिरता अमेरिका की स्वर्ण भंडार क्षमता और आर्थिक प्रभुत्व पर निर्भर थी। समय के साथ विदेशों में डॉलर की मात्रा इतनी बढ़ी कि हर डॉलर को सोने में बदलने का वादा विश्वसनीय नहीं रह गया। पश्चिमी यूरोप और जापान की तेज आर्थिक वापसी ने भी पुरानी विनिमय दरों और शक्ति संतुलन को असंगत बनाया। गार्टन का विश्लेषण दिखाता है कि संकट केवल किसी एक खराब निर्णय का परिणाम नहीं था, व्यवस्था अपने ही नियमों से दबाव में आ रही थी। जब विदेशी सरकारें डॉलर के बदले सोना मांग सकती थीं, तब अमेरिकी नीति निर्माताओं के सामने स्वर्ण भंडार बचाने, घरेलू अर्थव्यवस्था संभालने और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास कायम रखने की परस्पर टकराती चुनौतियां थीं। इसलिए कैंप डेविड का निर्णय एक लंबे समय से बन रहे असंतुलन की नाटकीय प्रतिक्रिया था। दूसरा, कैंप डेविड की गोपनीय बैठक और संकट में नीति निर्माण की राजनीति। गार्टन इस घटना को आर्थिक सिद्धांत की निर्जीव कहानी के बजाय उच्चस्तरीय शासन के व्यावहारिक अध्ययन की तरह प्रस्तुत करते हैं। अगस्त 1971 की बैठक में निक्सन, ट्रेजरी सचिव जॉन कॉनली, फेडरल रिजर्व अध्यक्ष आर्थर बर्न्स, जॉर्ज शुल्ट्स और अन्य प्रमुख अधिकारी ऐसे फैसलों पर विचार कर रहे थे जिनका घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय असर एक साथ पड़ना था। गोपनीयता महत्वपूर्ण थी क्योंकि पहले से सूचना निकलने पर मुद्रा बाजारों में अटकलें और घबराहट बढ़ सकती थी। फिर भी निर्णय केवल बाजार स्थिरता के लिए नहीं थे। निक्सन प्रशासन, मुद्रास्फीति, धीमी वृद्धि, रोजगार और राजनीतिक लोकप्रियता की चिंताओं से भी जूझ रहा था। पुस्तक बताती है कि आर्थिक नीति में तथ्यों के साथ व्यक्तित्व, संस्थागत अधिकार और चुनावी समय भी प्रभाव डालते हैं। सलाहकारों की भूमिकाएं अलग थीं। कोई मौद्रिक विश्वसनीयता और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर बल देता था, तो कोई घरेलू प्रतिस्पर्धा और तत्काल राजनीतिक संदेश पर। इस तरह बैठक संकट प्रबंधन का एक पाठ देती है। निर्णायकता उपयोगी हो सकती है, लेकिन उसके लिए विविध सलाह, स्पष्ट प्राथमिकताएं और परिणामों के प्रति जिम्मेदारी जरूरी है। बंद कमरे की सहमति वैश्विक परिणामों की अनिश्चितता को समाप्त नहीं करती। तीसरा, नई आर्थिक नीति के चार उपकरण और उनका संयुक्त राजनीतिक संदेश। कैंप डेविड में बनी नई आर्थिक नीति केवल गोल्ड विंडो बंद करने तक सीमित नहीं थी। इसमें डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता निलंबित करना, मजदूरी और कीमतों पर नियंत्रण, आयात पर 10% अधिभार तथा निवेश को प्रोत्साहित करने वाले कर उपाय शामिल थे। इन कदमों का संयोजन बताता है कि प्रशासन मुद्रा संकट को अलग तकनीकी समस्या नहीं मान रहा था। उसका लक्ष्य महंगाई, घरेलू उत्पादन, रोजगार, व्यापार प्रतिस्पर्धा और मतदाता विश्वास को एक साथ संबोधित करना था। मजदूरी और मूल्य नियंत्रण का उद्देश्य कीमतों की तेज बढ़त के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई का संकेत देना था। आयात अधिभार से विदेशी साझेदारों पर विनिमय दरों और व्यापार संबंधों के पुनर्समायोजन का दबाव पड़ा। गोल्ड विंडो का बंद होना सबसे दूरगामी कदम था, क्योंकि उसने डॉलर और सोने के स्थिर संबंध को तोड़ दिया। गार्टन की प्रस्तुति इस व्यापक पैकेज की राजनीतिक तर्कशक्ति को स्पष्ट करती है। सरकार ने एक ऐसा सार्वजनिक संदेश बनाया जिसमें अमेरिका अपने आर्थिक हितों की रक्षा करता दिखे, लेकिन इसी एकीकृत पैकेज में तनाव भी था। घरेलू राहत देने वाले उपाय सहयोगी देशों के लिए एकतरफा दबाव और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पुनर्लेखन जैसे लगे। यही तनाव आगे की वार्ताओं का आधार बना। चौथा, स्थिर विनिमय दरों से अधिक लचीली वैश्विक मुद्रा व्यवस्था तक संक्रमण, निक्सन के निर्णय ने तत्काल किसी पूरी तरह तैयार नई व्यवस्था को जन्म नहीं दिया। इसके बजाय उसने उस आधार को हटा दिया जिस पर स्थिर विनिमय दरों वाली पुरानी प्रणाली टिकी थी। आगे के वर्षों में वार्ताओं, समायोजनों और बाजार दबावों के बीच प्रमुख मुद्राएं अधिक लचीली और अंततः व्यापक रूप से तैरती विनिमय दरों की दिशा में गईं। गार्टन के अनुसार यह परिवर्तन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक था, क्योंकि मुद्रा मूल्य अब सरकारों की घोषित निश्चित दरों से कम और बाजार स्थितियों, नीतियों तथा पूंजी प्रवाह से अधिक प्रभावित होने लगे। लचीलापन देशों को अपने घरेलू आर्थिक हालात के अनुरूप नीति बनाने की कुछ अधिक गुंजाइश देता है, पर इसका मूल्य भी है। विनिमय दरों में उतार चढ़ाव व्यापारियों, निवेशकों और सरकारों के लिए अनिश्चितता बढ़ाते हैं। पुस्तक यह भी रेखांकित करती है कि ब्रेटन वुड्स का अंत अमेरिकी प्रभाव का सरल अंत नहीं था। अमेरिका ने एक अस्थिर व्यवस्था से पीछे हटते हुए भी केंद्रीय आर्थिक भूमिका बनाए रखी। फिर भी वैश्विक नेतृत्व की प्रकृति बदल गई। नियमों के संरक्षक के रूप में अमेरिका की छवि को झटका लगा, क्योंकि उसने सहयोगियों को पूर्व सूचना या साझा सहमति के बिना एक बुनियादी प्रतिबद्धता बदल दी थी। अंत में अनपेक्षित परिणाम, मुद्रास्फीति और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी का सबक, पुस्तक का महत्व केवल 1971 की घटना तक सीमित नहीं है। गार्टन उस निर्णय के बाद उभरी मुद्रास्फीति, सोने की कीमतों की अस्थिरता, तेल बाजार के झटकों और वैश्विक वित्तीय बदलावों के व्यापक संदर्भ की ओर ध्यान दिलाते हैं। इन सभी परिणामों को सीधे एक ही सप्ताहांत का प्रभाव मानना सरलीकरण होगा, क्योंकि बाद के वर्षों में भू राजनीति, ऊर्जा संकट और अनेक राष्ट्रीय नीतियां भी सक्रिय थीं। फिर भी कैंप डेविड ने उस दुनिया को बदल दिया जिसमें ये घटनाएं घटित हुईं। पुस्तक का मुख्य सबक कारण और परिणाम के इसी अंतर में है। नीति निर्माता तत्काल दबाव घटा सकते हैं, लेकिन वे दीर्घकालिक प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। घरेलू आर्थिक हितों की रक्षा के लिए उठाया गया एक तरफा कदम सहयोगी देशों की रणनीतियां, बाजारों की अपेक्षाएं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता बदल सकता है। समकालीन पाठक के लिए यह दृष्टि मुद्रास्फीति, व्यापार प्रतिबंध, मुद्रा तनाव और आर्थिक राष्ट्रवाद पर विचार करने में उपयोगी है। पुस्तक किसी सरल नुस्खे की पेशकश नहीं करती, वह बताती है कि संकट में तेज कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दोनों आवश्यक हो सकते हैं, पर दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सबसे कठिन राजनीतिक कार्य है। निष्कर्ष में थ्री डेज एट कैंप डेविड उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की आज की संरचना के पीछे के ऐतिहासिक मोड़ को समझना चाहते हैं। आर्थिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, अमेरिकी राष्ट्रपति राजनीति, सार्वजनिक नीति और व्यापार संबंधों के विद्यार्थी इसे ठोस संदर्भ के रूप में पढ़ सकते हैं। निवेशक और व्यावसायिक पाठक भी इससे यह समझ विकसित कर सकते हैं कि मुद्रा व्यवस्था और सरकारी निर्णय बाजारों की धारणाओं को कैसे बदलते हैं। इसका व्यावहारिक लाभ कोई निश्चित निवेश या नीति सूत्र नहीं, बल्कि संकट के संकेतों, संस्थागत सीमाओं और दूसरे क्रम के परिणामों को देखने की बेहतर क्षमता है। गार्टन की विशिष्टता यह है कि वे ब्रेटन वुड्स के अंत को केवल आर्थिक मॉडल की विफलता या केवल निक्सन की राजनीतिक चाल के रूप में सीमित नहीं करते, वे दोनों आयामों को जोड़ते हैं। पुस्तक दिखाती है कि विदेशी डॉलर भंडार, स्वर्ण परिवर्तनीयता और विनिमय दर जैसे तकनीकी प्रश्न सत्ता, व्यक्तित्व, सार्वजनिक संदेश और घरेलू दबावों से अलग नहीं होते। समान विषय की कई पुस्तकें दीर्घकालिक आर्थिक आंकड़ों या व्यापक संस्थागत इतिहास पर अधिक केंद्रित रहती हैं। इसके विपरीत यह पुस्तक एक सीमित समयावधि की गोपनीय बैठक के माध्यम से विश्व व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को पकड़ती है। इसलिए यह पाठक को निर्णय के पीछे की अनिश्चितता, विकल्पों की सीमाएं और परिणामों की जटिलता तीनों का सघन चित्र देती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जेफरी ई गार्टन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।